चलें एक स्टेप लिया आईसीसी ने कि इनको एक्सपैंड करना है।
मेरा 15 डिग्री से 16 डिग्री होना किसी को नजर आ गया नेकेड आई के साथ, और बाकियों के 25 और 20 हुए या 35 हुए भी नजर नहीं आए।
ये पॉलिसी जिस तरह से इन्होंने बनाई है इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी।
दोनों कोच इस बात को बखूबी समझते होंगे कि उनके लिए करो या मरो की स्थिति है।
पाकिस्तान आयरलैंड टेस्ट मैच एक तारीखी लम्हा, मशकूक बॉलिंग एक्शन के कानून पर क्या कुछ असरअंदाज, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सिर्फ 2 T20 लीग्स में शिरकत की इजाजत, और भारतीय हॉकी में कप्तान कोच की तब्दीली का म्यूजिकल चेयर गेम। खेल के मैदान से अब्दुल रशीद शकूर का सलाम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज से आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में मद्दे मुकाबिल है। ये टेस्ट रुकनियत मिलने के बाद आयरलैंड का अव्वलीन टेस्ट मैच है, जाहिर है उसके लिए ये एक तारीखी मौका भी है। मैंने साबिक टेस्ट क्रिकेटर बाजिद खान से पूछा कि आयरलैंड और अफगानिस्तान को गुज़िश्ता साल टेस्ट रुतबा मिला, लेकिन दोनों मुल्कों में बैन अल-अक़वामी क्रिकेट के लिए दरकार ढांचा मौजूद नहीं, क्या इन दोनों को टेस्ट रुकनियत दिए जाने के मामले में जल्दी नहीं की गई?
अब एक्सपेंशन तो आपने करनी है। मेरे ख्याल अफगानिस्तान में जितनी तरह की राइज हुई है क्रिकेट की, ये एक नेचुरल स्टेप था। फायदा इन दोनों को ये है कि इनके बॉर्डर में इनके साथ वाले जो कंट्री है, इंग्लैंड हो गया या अपना पाकिस्तान हो गया, वहाँ पे ये क्रिकेट बहुत सीखे हैं और वहाँ पे ही इनके प्लेयर्स डेवलप हुए हैं, और वहीं से ज़्यादातर इनकी जो क्रिकेटिंग नोआ और क्रिकेटिंग जो एबिलिटी है वहीं से वो ज़्यादा निखार आई है। बात रही कि किस तरह ये प्रोग्रेस करेंगे, देखिए मुश्किल तो बहुत है। टेस्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट सबसे ज़्यादा मुश्किल है और कई साल लग जाते हैं उसको एक टीम बिल्ड करने में। चलें एक स्टेप लिया आईसीसी ने कि इनको एक्सपैंड करना है, इनको टेस्ट क्रिकेट एक्सपैंड करनी है। अब इन दोनों कंट्रीज पे ओनस है कि कितनी जल्दी ये वो अपनाते हैं। कभी ऐसे नहीं होता है कि वो टीम प्रिपेयर्ड हो और टीम ऐसे आते ही टेस्ट मैच क्रिकेट में स्पेशली वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, तो जाहिर है शुरू में मुश्किल होंगी।
बाजिद खान से मेरा अगला सवाल था कि आयरलैंड के क्रिकेटर्स का तजुर्बा सिर्फ महदूद ओवर्स की क्रिकेट का है, इन हालात में उनसे पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में किस तरह की कारकर्दगी की तवक्को की जा सकती है?
बैटिंग में उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन क्वालिटी बॉलिंग के सामने और कंडीशंस ऐसी अगर हुई जहां पे बॉल सीम और स्विंग हो जो कि एक्सपेक्टेड है आयरलैंड में कि सीमर्स को थोड़ा मदद होगी, तो वो उनके लिए फिर मुश्किलात हो सकती है। फिर क्वालिटी स्पिनर भी नहीं है, बॉलिंग अटैक थोड़ा ऐसे लगता है कि हाँ अच्छा है, मतलब डिसेंट है, लेकिन कोई आपको रन थ्रू करने का मौका, मतलब ऐसा बॉलर ही नज़र आता है जो टीम को 3-4 ऊपर नीचे आउट करके तो एकदम से पासा पलट दे। बॉलिंग डिपार्टमेंट में पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अब क्योंकि पहला टेस्ट मैच है आयरलैंड का, पहला ओकेजन है, इतना बड़ा ओकेजन है, थोड़ा प्रेशर उन पर होगा ज़रूर।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन कवायद व जवाबित के मुताबिक करार दे दिया गया है, मतलब ये कि वो दोबारा बॉलिंग कर सकते हैं। मैंने मोहम्मद हफीज से मशकूक बॉलिंग एक्शन से मुतालिक आईसीसी के कानून और पाकिस्तानी टीम में उनके मुस्तकबिल के बारे में तफसील से बात की। मोहम्मद हफीज से मेरा पहला सवाल था कि बार बार बॉलिंग एक्शन की दुरुस्तगी के अमल से गुजरना किसी भी बॉलर के लिए कितना मुश्किल और तकलीफ दह मरहला होता है।
बहुत से चीजें असरअंदाज हो रही हैं, बहुत से बोर्ड्स की जो है वो ताकत है जिसके आगे कोई बोलना नहीं चाहता, बहुत सी जगहों के ऊपर आपके रिलेशंस हैं जिसके ऊपर कोई अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता, बहुत सी जगहों पे सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी रूल बना है उसको इम्प्लीमेंट क्यों ना करवाया जाए तमाम दुनिया के बॉलर्स के ऊपर, इसमें मुश्किल क्या है?
मैंने मोहम्मद हफीज से पूछा कि मशकूक बॉलिंग एक्शन से मुतालिक कानून के बारे में आम तासुर ये है कि इसका पूरा दारोमदार अंपायर्स पर है, क्योंकि उन्हीं की रिपोर्ट पर यह तायुन होता है कि बॉलर्स का बॉलिंग एक्शन 15 डिग्री के अंदर है या नहीं। आप इससे कितने मुतमईन हैं?
जब मेरी कॉल हुई मैच अंपायर ने मुझे कॉल किया, तो जब उसके मैं गया अपने टेस्ट करवाने के लिए तो 16, 17 और 18, एंड आई वाज सरप्राइज कि कैसे नेकेड आई 15 को 16 होते हुए नजर आ सकती है, और बहुत से ऐसे बॉलर जिनके 25 और 30 प्लस भी हैं लेकिन उनको अभी तक कॉल नहीं किया गया। तो मेरा ये डाउट है कि जो कॉल सिस्टम है, जो भी लोग इसको ऑन फील्ड मैच रेफरी या अंपायर जब इसको कॉल करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सी ये जो है ना सस्पिशियस किस्म की चीजें हैं जो समझ से बालातर हैं कि अगर मेरा 15 डिग्री से 16 डिग्री होना किसी को नजर आ गया नेकेड आई के साथ, और बाकियों के 25 और 30 हुए या 35 हुए भी नजर नहीं आए, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही ये वाली बातें।
मोहम्मद हफीज से मैंने ये जानना चाहा कि जब आप बॉलिंग नहीं कर पाते तो ये कहना शुरू कर दिया जाता है कि आपकी इफादिया टीम में बॉलिंग की वजह से ही है, क्या बहसियत बैट्समैन वाकई आपकी टीम में जगह नहीं बनती?
बयानात की हद तक जो लोग भी इसको बयान देते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मेरे 11,000 तकरीबन इंटरनेशनल रन हैं, मैंने पाकिस्तान के लिए 50 टेस्ट मैच खेले और उसमें मेरी 40 की ओपनिंग एज ए ओपनर एवरेज है। पिछले 8 सालों में जो मैंने पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मेरे पहला एक कैरियर था जो 2003 से 2010 तक चला, जिसमें मैं कभी भी बेहतर बैट्समैन के तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन मैं अपनी गलतियों को दूर करने के बाद जब मैं 2010 में वापिस आया हूँ, तब से लेके अब तक मेरे जो परफॉर्मेंसेज हैं वो सबके सामने हैं। एज ए बैट्समैन वन डे के अंदर मैंने 38 प्लस की एवरेज से मैंने स्कोर किया हुआ, सबसे ज्यादा 100 मेरे हैं, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच मेरे हैं वन डे के अंदर, T20 में परफॉर्मेंसेज सबके सामने हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर किसी को ये लगता है कि मोहम्मद हफीज अगर बॉलिंग ना करे तो उसकी टीम में नहीं जगह बनती, तो बिल्कुल ठीक है, अंटिल के वो मेरी जगह वो लोग लें जो बॉलिंग कर रहे हो, और अगर वो भी बैट्समैन ही हैं तो मेरी बैटिंग एवरेज अगर उनसे ज्यादा है, मेरी बैटिंग परफॉर्मेंस अगर उनसे ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन मार्क है उन स्टेटमेंट्स के ऊपर।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को साल में सिर्फ 2 T20 लीग्स में शिरकत की इजाजत देने का फैसला किया है, इसकी वजह क्या है? सुनिए डायरेक्टर क्रिकेट हारून रशीद क्या कहते हैं।
जो टीम मैनेजमेंट है, जो कैप्टन है और जो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन या सिलेक्शन कमेटी है, उनके जहन में यह है कि वर्कलोड को मैनेज करने के लिए हमें इनको महदूद करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग फॉरेन लीग, क्योंकि आपके पास वैसे लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास वन डे और T20 के, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कोई इंजर हो गया, कुछ हो गया, तो आपके वो जो 2019 का जो वर्ल्ड कप है वो इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये जो पॉलिसी है ये कंटिन्यूड बेसिस के ऊपर रिव्यू होती रहेगी।
इस फैसले के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर मैंने सहाफी और तजिया कार उस्मान समीउद्दीन से उनकी राय जाननी चाहिए।
ये पॉलिसी जिस तरह से इन्होंने बनाई है, इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। सबको मालूम है कि पाकिस्तान का बहुत बिजी स्केड्यूल है, ये अगला साल जो आ रहा है उसमें वैसे ही जो टॉप प्लेयर्स हैं आपके, उन्हें इतना टाइम मिलेगा नहीं और लीग्स खेलने में। बात है कि अदर बोर्ड्स भी, दूसरे बोर्ड्स में वो भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये देखिए, आजकल जो पावर है स्लोली आहिस्ते आहिस्ते प्लेयर के हाथ में आ रही है, तो आई डोंट नो दूसरे बोर्ड्स किस हद तक रोके अपने प्लेयर्स को। वेस्ट इंडीज में आपने देखा है ऑलरेडी जो टॉप प्लेयर्स हैं वो बोर्ड की परमिशन के बगैर काम करते हैं।
और अब जिक्र हो जाए भारतीय हॉकी का, जहां कप्तान और कोच बदलने का म्यूजिकल चेयर गेम जारी है। तफसील के साथ दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
The final of the Olympic hockey, the wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to naught in the tournament, are playing Germany. The final result was India 8, Germany 1.
ये सुनने से किसी को भी सुकून का एहसास हो सकता है कि भारतीय हॉकी टीम 8 मर्तबा ओलंपिक और 1 मर्तबा आलमी चैंपियन रह चुकी है। अब ये बात अलग है कि भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी मर्तबा साल 1980 के मॉस्को ओलंपिक में तलाई तमगा अपने नाम किया था और साल 1975 में मलेशिया में वो आलमी चैंपियन बनी। उसके बाद चैंपियन बनने तो दूर, भारतीय हॉकी टीम कभी इनके सेमीफाइनल तक में नहीं पहुंची। मॉस्को ओलंपिक में तलाई तमगा जीतने के बाद उसी टीम के कप्तान भास्करन की टीम से छुट्टी हुई, तब से आज तक वही सिलसिला बरकरार है। कभी टीम के कप्तान को हटाया जाता है तो कभी कोच को बदला जाता है। अब बीते कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे पायदान पर रहने वाली भारतीय मेंस और विमेंस टीम के कोच अदल बदल दिए गए हैं। विमेंस टीम के कोच हरेंद्र सिंह अब मेंस और मेंस टीम के कोच शॉर्ड मॉरिन विमेंस टीम को कोचिंग देंगे। अब भारत के सामने अगली चुनौती एशियन गेम्स है, अगर वहाँ तलाई तमगा मिला तो टीम सीधे ओलंपिक में जगह बना लेगी। ऐसे में हॉकी इंडिया का ये कदम दोनों कोच के लिए करो या मरो जैसे हालात वाला है। ऐसा मानना है साल 1975 में अपने गोल से फाइनल जिताकर भारत को आलमी चैंपियन बनाने वाले साबिक ओलंपियन अशोक कुमार सिंह का।
हरेंद्र सिंह का मेंस टीम में जुड़ना ये पहले भी जोड़े जा सकते थे। मरियन को एज इट इज रहने देना चाहिए था वुमेन्स टीम में, जो नहीं किया गया। ये कुछ गलतियां थी जो हुई हैं। बहरहाल गलतियां ही हमारा सबक होती है और अभी वक्त है हमारे पास में दोनों टीमों को संवारने का और आगे बढ़ाने का। मैं समझता हूँ दोनों कोच इस बात को बखूबी समझते होंगे कि उनके लिए करो या मरो की स्थिति है।
करो या मरो वाली हालत दोनों कोच की, लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब रिजल्ट देने के बाद वो अदले बदले गए हैं। कई मर्तबा तो कामयाबी दिलाने के बाद भी कोच और कप्तान के साथ दिल तोड़ने वाला सुलूक किया गया है। साल 1998 में बैंकॉक में एशियाई खेलों में तलाई तमगा जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान धनराज पिल्ले और कोच एमके कौशिक को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया और उसके बाद साल 2014 में टीम को तलाई तमगा दिलाने वाले कोच एमके कौशिक की ही एक बार फिर छुट्टी की गई। भारत की हिस्ट्री ऐसी दर्जनों मिसाल से भरी पड़ी है। उसी हिस्ट्री के पन्नों में साल 1964 में टोक्यो में हुए एशियाई खेलों में तलाई तमगा जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे गुरबख्श सिंह आने वाले वक्त को जहन में रखकर कहते हैं,
आज तो वीडियोग्राफी हो गया, हॉकी बहुत आगे चलेगी और इसके लिए बहुत जरूरी है कोच वो कंटिन्यू रहे। आज से ये फैसला हो जाना चाहिए कि दो साल के लिए हरिंदर को रखा जाएगा। आई विल बी हैप्पी व्हाटएवर रिजल्ट। लेकिन होता क्या है कि हम इसी तरह से चलते हैं, पहले ऑल्टमैन को निकाला गया।
हॉकी इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले पी श्रीजेश को हटाकर मनप्रीत सिंह को कप्तानी की बागडोर सौंपी। अब एक बार फिर पी श्रीजेश को टीम की कमान सौंपी गई है। अब भला जिस टीम के कोच और कप्तान को ही ये मालूम ना हो कि कब उसके कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ रख दिया जाए और कब उतार दिया जाए, तो ऐसे हालात में अगले ओलंपिक जो जापान में होने हैं उसकी राह आसान कैसे हो।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।